बीजां कुर्जनना भो बीजां कुर्जनना रागाद्याक्षयमागतायस्य ब्रह्मा वा विष्णु वा परो जिनो वा नमस्तस्मै जो विद्यादि सागर सुदी आदि सागर सुधी गुरु है तैशी शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल है सयानी केवल ज्ञान पाने पूजूं है सतत केवल ज्ञान पाने। बोले भगवान महावीर स्वामी के आचार्य कुंद कुंद स्वामी के आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज के सबने शायद अपने जीवन में कई बार नदियों को बहते हुए देखा होगा और हमने दो तरह की नदियां अपने जीवन में देखी होगी। एक नदी वो है जो पर्वत से निकल करके मैदानी क्षेत्रों से गुजर करके खाई और घाटियों में गिरने के बावजूद भी और निरंतर बहती चली जाती है और समुद्र में जाकर के विलीन होती है। और वहां जाकर के वो नदी मानो खो जाती है, लेकिन जो नदी समुद्र में जाकर के खो जाती है वो नदी स्वयं समुद्र बन जाती है। एक दूसरी और नदी है जो बहती तो है लेकिन किसी रेगिस्तान में जाकर के खो जाती है। वो भी नदी खोती है लेकिन रेगिस्तान में जाकर के उसका अपना अस्तित्व ही नष्ट हो जाता है। दोनों नदियों में से हम सहज रूप से कह देंगे कि वो नदी श्रेष्ठ है जो तमाम बाधाओं को पार करके भी और अपने लक्ष्य तक समुद्र तक पहुंचती है और वहां भले ही खो जाती है लेकिन वो स्वयं समुद्र हो जाए। हम सबका जीवन भी ऐसा ही है। हमारे जीवन का प्रवाह हम उसे जो दिशा देना चाहें उस पर निर्भर करता है। बुराइयों के रेगिस्तान में यदि हम चाहें तो अपनी नदी को खो सकते हैं, नष्ट कर सकते हैं, और यदि अच्छाइयों के समुद्र में हम अपने जीवन को विसर्जित कर देना चाहते हैं तो वह भी संभव है। और इसके लिए जरूरी है कि हम अपने जीवन का एक लक्ष्य तय करें। हमने पिछले दिनों अपने जीवन का लक्ष्य तय किया है कि हम अपने जीवन को अच्छा बनाएंगे, लेकिन लक्ष्य तय कर लेने के बाद यह भी तय करना जरूरी है कि हम अपने लक्ष्य की तरफ रोज रोज एक कदम आगे बढ़ेंगे। और ठीक दिशा में, अपने लक्ष्य की दिशा में हम बढ़ेंगे। जैसे भैया अपने को अपने घर पहुंचना हो और हम ये निर्णय कर ले कि अपने घर तो पहुंचना है, पर अपने घर की तरफ एक कदम रखेंगे और अपने घर से विपरीत दो कदम रखेंगे, तो बताइएगा क्या कभी हम अपने घर पहुंच पाएंगे। इतनी छोटी सी बात समझने की है। जीवन को अच्छा बनाना है, हमने अपने लक्ष्य को तय कर लिया है, तो फिर हमारे उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए निरंतरता भी होना चाहिए, कंटिन्यूटी भी होनी चाहिए। तमाम बाधाएं और मुश्किलें आने के बाद भी हम अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते चले। कल हम क्या करेंगे ये ना सोच करके आज मुझे क्या कर लेना चाहिए यह सोचना जरूरी है। एट प्रेजेंट हमारे सामने हमें क्या करना है ये हमेशा बना रहना चाहिए। हम लोग अपना लक्ष्य निर्धारित कर लेते हैं लेकिन अपने लक्ष्य की तरफ यात्रा शुरू नहीं करते, और बल्कि पोस्टपोन कर देते हैं कि कल शुरू करें। आज हमने तय तो कर लिया है लेकिन शुरू कल करेंगे नहीं। जिस दिन हम लक्ष्य तय करें उसी दिन से हमारी यात्रा शुरू हो, उसी दिशा में शुरू हो, हम उसे कल पर न टालें। अक्सर ऐसा होता है हमारे जीवन में जो जो अच्छाइयां हम लाना चाहते हैं वो हम निर्धारित तो कर लेते हैं पर उनकी तरफ हम रोज एक कदम नहीं बढ़ाते हैं। और इतना ही नहीं, हम उनको कल पर टालते चले जाते हैं। एक बार ऐसा हुआ कि बहुत आंधी पानी तूफान आया और लोगों के मकान गिर गए, बहुत लोग उसमें मारे गए आंधी तूफान में, और दो तीन दिन तक ये प्रक्रिया चलती रही। तीसरे दिन राहत कार्य शुरू हुआ, लोगों को मलबे से निकाला जाने लगा। तो एक व्यक्ति जो मलबे के भीतर दबा हुआ, जिसकी सांस चल रही है, उसे लोगों ने निकाल करके बाहर होश में लाने की कोशिश की। राहत कार्य करने वालों के पास खाने पीने का सामान तो था नहीं, वो तो सिर्फ जो लोग जीवित हैं उनको निकाल निकाल करके और भेज रहे थे। पर उन राहत कार्य करने वालों ने देखा कि उस व्यक्ति के हाथ में एक रोटी है। वो बेहोश होने से पहले पता नहीं कैसे एक रोटी अपने हाथ में दबाए हुए बेहोश हो गया। लोग नहीं सोच पाए कि वजह क्या हो। लोगों ने तो यही सोचा कि शायद खाना खा रहा होगा और उतने में आंधी पानी तूफान में मलबे में दब गया। पर देखना मजा, जब उस व्यक्ति को होश में लाया गया और उससे कहा कि जब तक हम कोई तुम्हारी मदद करें, खाने पीने की सामग्री लाएं, तुम तीन दिन से भूखे हो, ये जो हाथ में रोटी लिए हो उसको खा लो, तो मालूम वो क्या कहता, ये तो मैंने उस समय बचा के लिए बचा के रखी है जब कोई बहुत बड़ी, इससे भी बड़ी मुश्किल आएगी, तब के लिए मैंने बचा के। अब हम हंसेंगे उसकी इस बात पर कि मुश्किल अभी सामने है, अभी प्राण कंठगत है, लेकिन ये जो मैंने बचा के रखा है वो कल के लिए बचा के रखा है। ये कहलाता है फ्यूचर ओरिएंटेशन। ये भविष्य में जीने की हमारी जो आदत है या भविष्य पर अच्छी चीजों को टाल देने की जो आदत है वो इसका एक प्रतीक है। ये बहुत स्थूल सा उदाहरण है और लगता है कि कोई ऐसा करेगा क्या। हम लोग भी तो आज अपनी सांसें नष्ट करते जा रहे हैं कहे के लिए, भविष्य की सुरक्षा के लिए धन पैसा संपत्ति जोड़ जोड़ करके। रोज जिंदगी की सांसें गुजरती चली जाती हैं, इसका हमें बिल्कुल ख्याल नहीं है। रोज जीवन के कीमती क्षण व्यतीत होते जा रहे हैं, इसका कोई भय नहीं है। दीवार की एक एक ईंट चिन्हने में लगे हुए हैं हम, कितनी ऊंची हो गई हमारे घर की दीवार, लेकिन उस एक एक ईंट को रखवाने में एक एक सांस जो गुजर गई है वो फिर लौट के नहीं आने वाली है। क्या ये भी हमारा फ्यूचर ओरिएंटेड लाइफ स्टाइल नहीं है? है। भविष्य के लिए तो हम सुरक्षित करना चाहते हैं लेकिन वर्तमान मुश्किल में है। अगर हमने अपने लक्ष्य को निर्धारित किया है तो हम वर्तमान को संभालने की कोशिश करें। जो अज्ञानतावश हमने अतीत नष्ट कर दिया है उसकी चिंता ना करें, उसको लेकर के दुखी ना हो, और जो भविष्य ऐसा लगता है कि असुरक्षित है उसको लेकर के हम भयभीत ना हो। चिंता और भय दोनों चीजें हमारे लक्ष्य से हमें विमुख करती हैं। जो गुजर चुका है उसकी चिंता है, जो सामने नहीं है उसके प्रति हम भयभीत हैं, और जो वर्तमान हमारे हाथ से खिसकता चला जा रहा है उसको हम नहीं देख पा रहे। तो दूसरे नंबर की बात, अगर हमने अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारित कर लिया है कि श्रेष्ठता ही मेरा लक्ष्य है, तो मुझे उसे आज ही शुरू कर देना है, मुझे उस पर कल्पर नहीं डालना है, और लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मुझे निरंतरता बनाए रखनी है, कंटिन्यूटी बनी रहे। रोज मैं ये देखूं कि मैं अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ाऊं या नहीं, लक्ष्य से विचलित तो नहीं हो गया या कि विमुख तो नहीं हो गया या कि मैंने लक्ष्य के विपरीत चलना तो शुरू नहीं कर दिया। और तीसरी बात कि जो पाया है उसकी तरफ देखें और जो पाने के लिए हमने तय किया है उसका प्रयास कितना हमने किया है इसकी तरफ देखें। आज वर्तमान में हम ये सोचते हैं कि जो पाया है उसमें अगर हम संतुष्ट हो जाएंगे तब तो हमारी गति ही रुक जाएगी, प्रगति ही रुक जाएगी। ये पता नहीं किस व्यक्ति ने लोगों के भीतर ये विचार, आधा अधूरा विचार डाल दिया है। विचार तो अच्छा है लेकिन आधा अधूरा हो तो कोई भी विचार जीवन को ऊंचा नहीं उठा पाता। ये जो एक सभी के मन में कि यदि हम संतुष्ट हो जाएंगे तो हमारी प्रगति रुक जाए, तब तो हम डेवलप ही नहीं हो पाएंगे, ये आधा विचार है। पूरा विचार ये है कि जो प्राप्त हुआ है उसका आनंद लेना चाहिए और जो प्राप्त नहीं है उसके लिए कितना प्रयास हमारा है इस बात के लिए सजग और सावधान रहना चाहिए। मेरी अपनी प्राप्ति का तो मुझे कोई सुख नहीं हुआ, मुझे जो प्राप्त नहीं है उसकी पीड़ा खाई जाती है, ऐसे व्यक्ति के द्वारा कभी प्रगति नहीं हो सकती। ऐसा व्यक्ति कभी भी अपने उस लक्ष्य को नहीं प्राप्त पा सकता जो उसने निर्धारित किया है। मैं लक्ष्य की तरफ एक कदम आगे बढ़ूं इस बात का मुझे सुख होना चाहिए, लेकिन अभी 100 कदम और चलना है, अभी तो एक ही कदम मैंने रखा है, क्या होगा इस एक कदम से। वो जो 100 कदम मुझे रखने हैं उनकी तरफ देख देख करके मैं और पीड़ित होता हूं, और वो जो एक कदम मैंने आगे रखा है उसकी फिक्र ही नहीं है। नहीं भैया, जीवन में हम जितने अच्छे होते चले जाएं। अगर हमने निर्धारित किया है अच्छे होना, तो जीवन में जितने अच्छे होते चले जाएं, उसके लिए अपने हाथ से अपनी पीठ थपथपाएं और जो जो खराबियां मेरे भीतर हैं, उनकी तरफ सजग रहें कि उनको मुझे निकालते चले जाना। कहीं ऐसा ना हो कि अपने भीतर की बुराइयों को देखकर हम निराश, हताश और उदास होकर के बैठ जाएं और जो हमने प्राप्त किया है उसका सुख न ले पाए। दो लोग रास्ते से चले जा रहे हैं, बहुत धूप का समय है, लेकिन रास्ते में पेड़ लगे हुए हैं। कहीं कहीं पेड़ की छाया है, फिर धूप है, फिर पेड़ों की छाया है। दो लोग एक साथ जा रहे हैं, एक ये सोच रहा है, दोनों जिस समय छाया में आते हैं तब एक सोचता है कि देखो तो पीछे कितनी धूप थी, ये जरा सी छाया आई और आगे फिर धूप। कैसी है मेरी यात्रा, कैसा है मेरा जीवन, यहां तो छाया बहुत कम है, विपरीतताएं ही बहुत अधिक हैं। और उदाहरण सामने है कि अभी तो धूप में चल के आए हूं, ये जरा सी छाया आई है और फिर आगे फिर धूप दिख रही है। और दूसरा व्यक्ति क्या सोच रहा है कि देखो तो कितनी बढ़िया छाया मिली और बस थोड़ी सी धूप आगे और है और वो आगे दिख रही छाया, फिर मैं छाया में पहुंच जाऊं। भैया, मुझे कहना यह है कि हमने जो पाया है वो कमती नहीं है, जो नहीं पाया है वो बहुत है, ये बात जुदी है, लेकिन जो हमने पा लिया है वो भी कम नहीं है। मालूम हमने क्या पाया है? हमने पांचों इंद्रिय और मन पाया है, और पांचों इंद्रिय और मन की निरोगता पाई है, और पांचों इंद्रिय और मन तो और भी लोगों को मिल जाते हैं, नाल की जीवों को भी पांचों इंद्रिय और मन मिलते हैं, देवों को भी पांचों इंद्रिय और मन मिलते हैं, लेकिन हम उनसे बाहर डिफर हैं। हमने मनुष्य पर्याय प्राप्त करके पांचों इंद्रिय और मन पाए हैं, हमने मन, वाणी और शरीर की सामर्थ्य भी पाई है, अगर तो कौन सी वाली पाई है, जिससे कि हम अपने मन, इंद्रिय और वाणी इन सब से पार हो सकते हैं। हमने वो पर्याय पाई है, हमने थोड़ा मोड़ा नहीं पाया है। ये जो हमने मनुष्य पर्याय पाई है वो नहीं दिखाई पड़ता। इस मनुष्य पर्याय में मैंने चार पैसे नहीं जोड़ पाए हैं, ये तो दिखाई पड़ता। मैंने अच्छा मकान नहीं बना पाया, मैंने आज तक अच्छे ढंग से खा नहीं पाया, आज तक मैंने अपने अच्छे ढंग से पहन नहीं पाया, चार लोगों के सामने मैं कार में बैठ करके घूम नहीं पाया, ये तो दिखाई पड़ता है। लेकिन मैंने कितनी मेहनत करके अपने पूर्व जीवन में ये मनुष्य पर्याय, पांचों इंद्रिय और मन प्राप्त किया, ये नहीं दिखाई पड़ता। हम अगर जो प्राप्त है उसे नहीं देख पाएंगे तो शायद हम कभी भी अपने लक्ष्य की तरफ नहीं पहुंचेंगे। पहले नंबर मैंने जो प्राप्त किया और कितनी मेहनत से प्राप्त किया है, और मुझे जो प्राप्त करना है उसके लिए मेरा प्रयास कितना है, मुझे जो प्राप्त करना है उसकी चिंता करने के लिए नहीं कह रहे, मुझे जो प्राप्त करना है मेरा प्रयास कितना है ये मैं हमेशा देखता रहूं उसके लिए। मुझे अगर अच्छे बनना है तो मेरा प्रयास कितना है। अकेले वरीड होने से क्या होगा, अकेले चिंतित होने से कि मुझे अच्छा बनना है, मैं बहुत चिंतित हूं, मुझे अच्छा क्यों नहीं बन रहा हूं, अरे वाह, ऐसी चिंता करने से क्या अच्छे बन जाएंगे? नहीं, मुझे प्रयास क्या करना है इस बात के लिए मुझे हमेशा सजग रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए। मेरा प्रयत्न मैं करते रहूं, मुझे लक्ष्य की प्राप्ति कब होगी इसकी कोई चिंता नहीं है, क्योंकि मेरा प्रयास अगर ठीक है तो मुझे लक्ष्य की प्राप्ति अवश्य होगी। मुझे ये कॉन्फिडेंस है, मुझे ये विश्वास है। और पांचवी चीज या चौथी चीज कि हम ध्यान रखें कि अगर हमने अपने जीवन को अच्छा बनाने का लक्ष्य बना लिया है तो हमें बुराइयां छोड़ना पड़ेगी। अगर हम बुद्धिमान बनना चाह रहे हैं तो हमें अपनी मूर्खता छोड़नी पड़ेगी। हाँ, हम ये चाहते हैं कि भौतिक सुख सुविधाएं भी न छूटें और आत्म सुख मिल जाए। ये जो कंट्राडिक्टरी थॉट्स हैं हमारे भीतर, उनको हमें देखना पड़ेगा। ये नेगेटिव पॉजिटिव थॉट्स के लिए तीन तरह के थॉट्स होते हैं, पॉजिटिव 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 नेगेटिव नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव, तीन तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स कह लीजिएगा हमारे भीतर हमेशा ये चलता रहता है। आज आज सबसे ज्यादा नेगेटिव पॉजिटिव थॉट्स वाले लोग देखने में आते हैं अगर ऑब्जर्वेशन करें तो। पॉजिटिव पॉजिटिव तो ये है कि मेरे मन में दो एक जैसी इच्छाएं जागृत होती हैं, जैसे कि मुझे किसी बहुत अच्छे थिएटर में और कोई फिल्म देखनी है और वो फिल्म सिर्फ 100 बाकी बचा हुआ है और मुझे क्या करना है, दो में से मैं कोई एक ही शो देख सकता हूं, मैं टॉस कर लू, दो में से जब एक ही देख पाऊंगा तो ये पॉजिटिव पॉजिटिव है। जब दो चीजों में से मैं एक ही कर पाऊंगा तो मुझे निर्णय करना है बस, और कोई ज्यादा इसमें चिंतित होने की तो कोई बात ही नहीं। दो अच्छाई के काम हैं उनमें से मुझे किसी एक को चुनना है, कोई दिक्कत की चीज नहीं, इसमें क्या दिक्कत की चीज है। मुझे मंदिर जाना है और बेटे को स्कूल भेजने के लिए अपना भोजन भी बनाना है, दो काम हैं, दोनों पॉजिटिव हैं। अपने घर का दायित्व भी मुझे पूरा करना है और अपने आत्म कल्याण का दायित्व भी मुझे पूरा करना है, दोनों पॉजिटिव थॉट्स हैं। लेकिन इनमें से एक समय में एक ही की पूर्ति होगी। मैं पहले बेटे को ठीक से भोजन करा के भेज दूं, उसके बाद मेरे पास समय रहेगा, मैं मंदिर जाऊंगा। या कि बेटे से पूछ लूं कि मैं 5 मिनट में मंदिर होके आऊं, तब तक तुम्हारे देव तो नहीं हो जाएंगे, इतना ही तो करना है। कुछ थॉट्स होते हैं नेगेटिव नेगेटिव, पढ़ना भी ना पड़े और फेल भी ना हो, नेगेटिव दोनों चीजें, नेगेटिव पढ़ना भी ना पड़े ये भी नेगेटिव और फेल भी ना होना पड़े, तो दो में से एक स्वीकार कर लो, या तो पढ़ना स्वीकार कर लो या फेल होना स्वीकार कर लो, दो में से कोई एक स्वीकार करना पड़े। लेकिन इससे भी ज्यादा खतरनाक चीज है नेगेटिव पॉजिटिव। मैं संसार में साधु भी कहलाऊं और भोग विलास की सामग्री भी ना छूटे, अरे वाह, मैं जीवन में बहुत बढ़िया से अपने ठाट बाट के साथ रहूं और मेरा जीवन भी अच्छा बन जाए, मेरे जीवन में सारी बुराइयां भी बनी रहें, मैं सारे पाप भी करता रहूं लेकिन मेरा जीवन अच्छा बन जाए, ये नेगेटिव पॉजिटिव कॉन्फ्लिक्ट, ऐसे अंतर्द्वंद में हम ना पड़े कृपा करके। यदि हम अपने जीवन को अच्छा बनाना चाहते हैं तो हम ये तय कर लें कि मुझे अपनी बुराइयों से निजात पानी ही पड़ेगी, मुझे अपनी बुराइयों को अपने से अलग करना ही पड़ेगा। नहीं, इतने दिन से हम जिनके साथ रहे आए हैं कैसे उनको छोड़ दें, ऐसे नहीं चलेगा। अगर हमने अनादि काल से उन बुराइयों को अपने साथ रख रखा है तब भी हमें यह तय करना पड़ेगा कि जब हमने अपने जीवन को अच्छा बनाने की शुरुआत की है तो बुराइयों को हटाना ही पड़ेगा। एक उदाहरण है जल्दी समझ में आने वाली, वैसे हंसी भी आएगी उस उदाहरण से। अपन लोगों को दूसरे पर हंसने के कितने मौके मिलते हैं ना, जितनी घटनाएं जीवन में सुनते हैं सुनकर के दूसरे पर हंसी आती है लेकिन अपने ऊपर रोना कभी नहीं आया। अपने ऊपर हंसना नहीं चाहिए, अपने ऊपर तो रोना ही चाहिए मेरे ख्याल से। तो क्या हुआ, एक बार एक बहुत सुंदर सा भिखारी था, सुंदर सा भिखारी कह रहा हूं, हां मांगता तो भीख था लेकिन था बहुत सुंदर। एक सेठ जी के यहां पर उसने जब भीख मांगी तो सेठ जी को लगा कि इतना सुंदर सा व्यक्ति है, ये तो बेटी के लायक है, भले ही भीख मांगता है क्या फर्क पड़ता, जरा पूछ तो ले, किसी बड़े घराने का लग रहा है, हो सकता है कोई ऐसी विपत्ति आ गई हो जिसमें कि भीख मांगने के लिए मजबूर होना पड़ा, हो सकता है ऐसा जीवन में कई बार आता है। तो सचमुच ऐसा ही था, उसने पूछा, कहा कि हां हमारे माता पिता तो बहुत बड़े थे लेकिन उन्होंने हमें छोड़ दिया और हमें भीख मांगना पड़ा। तो सुनो, कब से मांगते हो भीख? बचपन से। मुझे तो जब से याद है मेरे हाथ में कटोरी है। तो सुनो, हम ऐसा चाहते हैं कि हम तुम्हें अपनी पूरी संपत्ति दे देंगे और अपनी बेटी भी तुम्हें दे देंगे। बोलो तैयार हो? उसने कहा तैयार है, इसमें क्या, सोच लो। उसने कहा इसमें सोचने की बात नहीं है, ये तो इतनी बड़ी चीज है, क्या अपनी पूरी संपत्ति दे रहे हैं और अपनी बेटी दे रहे हैं, तब मुझे क्या सोचना, चलो चलते हैं। जैसे उसको भीतर ले गए उसने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। मालूम वो क्या कर रहे थे? वो कर ये रहे थे कि उससे कह रहे थे कि अब जबकि तुम सेठ जी के दामान होने वाले हो तो ये वाली ड्रेस अच्छी नहीं लगती, उतारो, और ये कटोरा भी तुम्हारे हाथ में शोभा नहीं देता, इसको अलग करो। तो उसने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। बाहर आ गया वो रोड पर कि साहब, भीड़ ने घेर लिया उसको कि क्या हुआ क्या हुआ, सेठ जी तो सत्ते में आ गए। वो लोगों से मालूम क्या कह रहा था कि सेठ जी पता नहीं बाद में क्या देंगे क्या नहीं देंगे, पर अभी तो शुरुआत में उन्होंने मुझे कमरे में बंद करके मेरे कपड़े उतारना चाह रहे थे। मेरा इतने वर्षों से मैंने जो कपड़े पहन रखे, मैंने जो कटोरा रखा उसको छीन रहे हैं, वो इतने बड़े आदमी होकर के मेरे कपड़े छीन रहे, मेरा कटोरा छीन रहे, अब बताओ। सोच सकते हैं आप, मेरे भिखारी के कपड़े में पहने रहूं और भिक्षा का कटोरा भी लिए रहूं और सेठ जी मुझे अपनी संपत्ति दे दें, अपनी बेटी दे दें, ये क्या है मालूम? यही तो हमारे साथ है, यही बचपना, यही मूर्खता हमारे अपने जीवन में है कि हमसे ये संसार भी ना छूटे और मोक्ष का सुख भी मिल जाए। हम में और उसमें ज्यादा फर्क नहीं है, बताओ। उसको ये नहीं समझ में आ रहा है कि जब मैं सेठ हो जाऊंगा तो कटोरे की क्या जरूरत और मुझे इन खराब कपड़ों की जरूरत, मुझे जब इतने शाही कपड़े मिलने वाले। हालांकि लगता तो ऐसा है कि इस कहानी में सिर्फ बुद्धू बनाया गया है, ऐसा कहीं होता है क्या? लेकिन अपनी बुद्धिमानी और अपनी मूर्खता का अगर अपन विचार करें तो हम भी ऐसे ही बुद्धिमान और ऐसे ही मूर्खता के काम करते हैं। हम अपनी बुराइयों से चिपके रह करके अपने जीवन को अच्छा बनाना चाहते हैं, शायद ऐसा कभी संभव नहीं हो। और आखिरी चीज, अगर हम अपने जीवन में ये लक्ष्य तय कर चुके हैं कि हमें अपने जीवन को अच्छा बनाना है, तो अपने लक्ष्य के प्रति हमें फुली डिवोट होना चाहिए, पूर्ण रूप से समर्पित होना चाहिए। ये आखिरी बात, इतनी गहरी हमारे भीतर श्रद्धा क्या अपने लक्ष्य के प्रति होती है जिसको हम निर्धारित करते हैं? हमने पिछले दिनों श्रद्धा पर बहुत सारी बातें की हैं, हमने श्रद्धा को दृष्टि की निर्मलता भी माना है, लेकिन हमने अपना लक्ष्य निर्धारित करने के बाद उसके प्रति अपनी श्रद्धा, अपना समर्पण कभी भी नहीं रखा। अगर हम अपने जीवन को अच्छा बनाना चाहते हैं तो क्या वास्तव में हमारे भीतर अच्छे बनने के प्रति समर्पण है? इतनी ललक है हमारे भीतर? ललक शब्द और श्रद्धा शब्द दोनों के दो उदाहरण हैं। अगर अपन देखना चाहें अपने भीतर कि हाँ सचमुच हमारे भीतर इतनी ललक है, इतनी इच्छा है, इतना उत्साह है, इतनी उमंग है, या कि हम इतने समर्पित हैं अपने लक्ष्य के प्रति। भैया, जिसके प्रति हमारी श्रद्धा होती है 24 घंटे वो हमारे सामने रहता है, नहीं रहता? पहले के लोग सुबह उठते थे तो जय जिनेंद्र से शुरुआत करते थे, रात सोते थे तो जय जिनेंद्र कहके सोते थे, जिससे मिलते थे उससे भी जय जिनेंद्र कहते थे। ये क्या चीज है? ये लक्ष्य के प्रति समर्पण है। मुझे हमेशा अपना लक्ष्य स्मरण में है, किसी से मिल रहे हैं तब भी उससे ये कह रहे हैं कि जय जिनेंद्र, तुम्हारे भीतर और मेरे भीतर जिनेंद्र बढ़ने का सामर्थ्य है, मुझे हमेशा ये ध्यान रखें। तुम भी ध्यान रखना। सुबह से उठे हैं तब भी भगवान जिनेन्द्र को याद किया है क्योंकि वो मेरा लक्ष्य है। रात सोने से पहले भगवान जिनेन्द्र को याद किया है क्योंकि वो मेरा लक्ष्य है, लक्ष्य के प्रति, या कि जिसके प्रति हमारी श्रद्धा होती है, जहां बैठते हैं हम उसके गुणगान करते हैं। क्या हमने अगर अपना लक्ष्य अच्छाइयों को बनाया है तो क्या हम हमेशा अच्छाइयों का गुणगान करते हैं या कि दूसरे की बुराइयों का गुणगान करते हैं? ये जरा सा एनालाइज करना पड़ेगा अपने भीतर। लेकिन हम देखते हैं कि हम अच्छाइयों का गुणगान कम करते हैं, बुराइयों की तरफ ज्यादा हमारा ध्यान बैठ जाते हैं। वहां क्या बुरा हुआ, वहां क्या खराब हुआ, इसके बारे में हम ज्यादा विचार करते हैं। वहां क्या अच्छा हुआ, यहां क्या अच्छा हुआ, ये हम कभी विचार नहीं करते। इससे मालूम पड़ता है कि लक्ष्य की तरफ हमारा रुझान, इंक्लाइनेशन या डिवोशन उतना नहीं है जितना कि बुराइयों को हम ज्यादा याद रखते हैं। दूसरे के भीतर की बुराइयों को हम ज्यादा याद रखते हैं, दूसरे के भीतर की अच्छाइयों को नहीं। बाहर के संसार की बुराइयों को हम ज्यादा याद रखते हैं, अच्छाइयों को नहीं, और अपने भीतर की अच्छाइयों को ज्यादा याद रखते हैं, बुराइयों को नहीं। इतना ही फर्क है। यदि हम अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ना चाह रहे हैं तो लक्ष्य को हम ज्यादा याद रखें, अपने भीतर जो लक्ष्य से विपरीत है उसको भूल जाएं। मेरे भीतर बहुत सी बुराइयां हुआ करती थी, अब तो मैं अपने भीतर की अच्छाइयों को देखूंगा और उनको बढ़ाऊंगा। दूसरे के भीतर भी बुराइयां नहीं देखूंगा, अच्छाइयों को देखूंगा, तभी तो मैं उनसे शिक्षा ले पाऊंगा। एक साधु के पास गया था व्यक्ति अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए। तब उस साधु जी ने कहा कि मैं पहले देखूंगा कि तुम क्या सचमुच अपने जीवन को अच्छा बनाने की ललक लेके आए हो। और वो नदी में नहाने ले गया था उसको, और वो तो तैरना नहीं जानता था। तो साधु जी ने जाकर के कहा कि नहीं, डोंट फियर, डोंट वरी, आओ मेरे साथ, मैं तो हूं, मैं संभाल लूंगा। और वो उसको नदी में कुदा दिया, और कुदाने के बाद ना जब वो डूबने लगा तो और डुबा दिया था उसको, हां, और वो छटपटा रहा है बाहर निकलने के लिए, सांस लेने के लिए। वो मारना नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने एक मिनट के बाद उसको बाहर निकाल के पूछा कि कैसा लग रहा था, क्या याद आ रहा था। कुछ भी याद नहीं आ रहा था, बस ये याद आ रहा था कि एक सांस और मिल जाए। तो मालूम साधु जी ने कहा, क्या कहा, कि जैसे एक सांस को पाने की तुम्हारे भीतर तड़प थी, ऐसे ही जिस दिन अपने जीवन को अच्छा बनाने की तड़प तुम्हारे भीतर पैदा होगी, उस दिन तुम्हारा जीवन अच्छा होना शुरू। क्या वास्तव में हम लोगों के अंदर जीवन को अच्छा बनाने की ऐसी तड़प है, या कि सिर्फ हम बात करते हैं कि जीवन को अच्छा। अपने भीतर इस बात को हम झांक करके देखें, अगर नहीं है तो उसको पैदा करें, और जिस लक्ष्य को हमने निर्धारित किया उसके प्रति हमारा समर्पण कितना है, इसको भी हम देख लें। इसके लिए भी एक उदाहरण निर्धारित कर लेना है, ये विचार कर लिया, अपने लक्ष्य के प्रति निरंतरता हमें रखनी है, उसकी तरफ हमेशा बढ़ते रहना है, और अपने लक्ष्य को कल पर नहीं डालना है, उसकी पूर्ति के को कल पर नहीं डालना है, आज ही उसकी पूर्ति का उपाय करना शुरू कर देना है। और उसके बाद उस लक्ष्य को जितना जितना पाता चला जाऊं, मैं लक्ष्य की तरफ जितना बढ़ते चला जाऊं, उतना मैं ध्यान उसकी तरफ दूं जो मैंने नहीं पाया है, उसकी तरफ नहीं, जो अच्छाइयां मेरे भीतर हैं उनको मैं उनका एंजॉय करूं, और जो अच्छाइयां मुझे पाना है उनकी तरफ मैं सजग रहूं, और मेरे भीतर उस लक्ष्य की प्राप्ति की तड़प हो और उस लक्ष्य के प्रति मेरा समर्पण। देखें फिर कैसे नहीं हमारा जीवन अच्छा होता है, अगर हमने अपने जीवन का लक्ष्य अच्छा होना बनाया। एक राजा था, उस पर पड़ोसी ने जब आक्रमण किया तो बहुत मुश्किल आई। मुश्किल इसलिए आई कि उस राजा के पास इतनी सेना नहीं थी जितनी कि उस पड़ोसी राजा के पास थी। ये तो बहुत ठीक है, सेनापति को बुलाया कि वैसे तो हमारे पास उतनी सेना नहीं है जितनी कि पड़ोसी के पास है, जा सकते हो क्या लड़ने के लिए? उसने कहा जब हमारे पास तैयारी ही नहीं है, सेना ही नहीं है, तो वहां जाकर के और अपने हाथ से अपनी मौत का इंतजाम करना, ये तो कोई बुद्धिमानी नहीं है। और बात बिल्कुल तर्कसंगत थी। सेनापति ने इनकार कर दिया। सेनाओं से पूछा तो उन्होंने कहा कि सेनापति के अभाव में क्या हम लड़ने जा सकते हैं, और हमें क्यों भेजना चाहते हैं जब एक एक के पीछे वहां हमसे 50-50 लोग हैं, हम इतने से हैं कि हम अगर एक हैं तो वो हमसे 50 गुने हैं, तो फिर क्या मतलब है? आप अपनी हार मान लो ना। लेकिन राजा हार कैसे माने? हमारे जीवन में कितनी भी बुराइयां हों, लेकिन हमने अगर तय कर लिया है कि अपने जीवन को अच्छा बनाना है, तो हम हार कैसे मान लेंगे? भले ही बुराइयां हमसे अच्छाइयों से कई गुनी प्रबल, लेकिन इसके बावजूद भी अगर मुझे अपने जीवन को अच्छा बनाना है तो बुराइयों से हार नहीं मानूंगा। मैं जूझूंगा, अपनी बुराइयों से जूझूंगा अच्छे बनने के लिए। ये कहलाता समर्पण। राजा के मन में था जीतने के प्रति समर्पण। राजा ने कहा कि कोई ना कोई उपाय तो खोजना पड़ेगा। एक पुराना मित्र हुआ करता था जो राजा को हमेशा अच्छी सलाह देता था, लेकिन वो सुनते हैं कि साधु बन गया, कोई बात नहीं मैं मिलूंगा उससे। और राजा उस अपने मित्र से मिला। वो साधु तो बन गया था लेकिन विनोदी स्वभाव का बहुत था, विनोदी स्वभाव का, बड़ा मजा करता था, बड़ी बड़ी विपत्तियों को ऐसे हंसी में टाल देता था। जब उसने राजा की सारी बात सुनी तो उसने कहा कि सुनो, तुम विपत्ति में हो ना? हाँ। मेरी मदद चाहते हो? हाँ। तो मैं बन जाता हूं तुम्हारा सेनापति। उसने कहा कि तुम मजाक कर रहे हो मेरे साथ? अरे मैं तुमसे कोई रास्ता पूछने आया, तुम साधु हो और तुमने कभी हथियार तक उठाए नहीं, चलाने की बात तो दूर, और तुम कह रहे हो कि मैं बन जाता हूं तुम्हारा सेनापति। उसने कहा सुनो, मैं तुम्हारे साथ कोई मजाक नहीं कर रहा हूं, मैं सच कह रहा हूं। यदि तुम तैयार हो तो मैं तो तैयार हूं सेनापति बनने के लिए, मैं लड़ाई पर जाने तैयार। अब थोड़ा सा लगा हो राजा को लगा कि लगता तो कोई बात जरूर है, इतना कॉन्फिडेंस इसके भीतर है, जबकि लड़ना बिल्कुल नहीं जानता। ये कह भी रहा है कि मैं बिल्कुल लड़ना नहीं जानता, मैं कोई हथियार भी नहीं उठाऊंगा, लेकिन मैं तुम्हारा सेनापति बनने तैयार हूं। हमारे पांचों इंद्रिय और मन हमारी सेना हैं, और अगर चेतना एक बार तय कर लेना कि मैं सेनापतित्व करूं, तो ये सारी सेना लड़ने तैयार हो जाएगी। लेकिन सेनापति किसको बनाना है? और वो फकीर कह रहा है, वो साधु कह रहा है कि मैं बन जाता हूं सेनापति। राजा ने कहा कि अब क्या करें? अगर तुम कहते हो तो मुझे स्वीकार है, बन जाओ तुम सेनापति। बस चल पड़ा वो। सारी सेनाओं के सामने जाकर उसने कहा कि मैं एक साधु फकीर, ना मैं हथियार चलाना चाहता हूं, मैं तो हथियार उठाना भी नहीं जानता हूं, लेकिन राजा ने मुझे सेनापति बनाया। और सुनो, जब भी मैं सेनापति बनता हूं मुझे विश्वास है कि जीत मेरी होती है। सेनाओं ने कहा कि ऐसा है, तो हम तुम्हारे साथ हैं। देखना मजा। राजा को विश्वास नहीं था कि सेनाएं इसके सेनापति बनाने पर साथ देंगी, लेकिन सेनापति ने उस साधु ने जो कि सेनापति बन गया था उसने कहा कि मुझे विश्वास है कि अगर मैं सेनापति बना हूं बिना हथियार उठाए भी जीतूंगा मैं। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। हम एक बार अगर अपने मन को अच्छा बनाने के लिए तैयार हो जाता योगी की हार, अब भगवान क्या जवाब दें। लेकिन सेनापति ने कहा कि भगवान कह रहे हैं तुम्हारे पास जो सिक्का है उसको उछाल के देख लो मेरे सामने, अगर हेड आए तो जीत तुम्हारी, टेल आए तो हार नहीं है, लौट जाओ वापिस। सेना ने कहा इससे बढ़िया बात क्या हो सकती, उछालो सिक्का। उस फकीर के पास एक ही सिक्का था, हमेशा एक ही सिक्का रखना चाहिए अपने पास, सिक्के बदलना नहीं चाहिए। सफलता का सिक्का अगर अपने पास है तो हमेशा सफलता मिलेगी, और अगर आपके पास अपने हार का सिक्का है तो कितने ही बार उछालो हर बार हार ही हार होगी। उछाला उसने सिक्का, क्या गिरना था, हेड। उसने कहा परमात्मा साक्षी हैं, वो खुद कह रहे हैं कि जीत तुम्हारी है। सेनाओं में उत्साह भर गया, होना क्या था, कहानी तो पहले से ही बता रही है कि जीतने वाले ही जीतता है, हारा हुआ ही हारता है। हाँ, हारा हुआ ही हारता है, जीतने वाला तो हमेशा जीतता है। हम हारे हुए लोग ना हो, हमारा नाम हारे हुए लोगों में ना हो, बस इतना ही ध्यान रखो। वापिस लौटते हैं जीत करके, जीत करके, इतने थोड़े से सेना के साथ भी जीत के लौटते हैं। और फकीर उसी रास्ते से फिर वापिस लौट रहा है, और अब की बार वो सेनाओं से कहता है कि जरा थैंक्स तो दे लें उस भगवान को, धन्यवाद दे लें कि जिसने हमें बताया था कि जीत हमारी होगी और वास्तव में हम जीत करके लौटे हैं, धन्यवाद तो देना ही चाहिए। और जाते हैं वे और भगवान के सामने फकीर हाथ जोड़े हैं, वो साधु हाथ जोड़ के खड़ा है कि बहुत बहुत धन्यवाद, आपने कहा था कि जीत हमारी होगी इसलिए हम जीत के लौटे हैं। और सेनाओं से कहता है कि लौट जाओ, राजा से कहना कि जीत हमारी हुई, अब मुझे वापस जाने की कोई जरूरत नहीं है, मेरा काम तो पूरा हो गया। और सुनो, एक बात मुझे तुमसे कहनी है, और तुम अपने उस पुराने सेनापति से कह देना जिसने लड़ाई लड़ने से पहले ही अपनी हार मान ली थी, कि हमने लड़ाई भगवान की कृपा से नहीं जीती है, हमने लड़ाई भगवान के प्रति और अपने प्रति विश्वास से जीती है। तुम देखना चाहते हो सिक्का जो हमने उछाला था, तो देख लो, उस सिक्के में दोनों तरफ हेड ही हेड था, टेल तो कहीं था ही नहीं। भैया ये तो बहुत छोटी सी कहानी है, मुझे आपसे यही कहना है कि हमारे जीवन में भी हम अगर एक बार हर तरफ ये तय कर लें कि मुझे अपने जीवन को अच्छा बनाना है, चाहे सारा संसार बुराइयों की तरफ जा रहा हो, चाहे कोई अच्छा बनने में मेरा सहयोग ना करे, मुझे अकेले ही अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए निकलना पड़े, तब भी मैं अपने जीवन को अच्छा बनाऊंगा इसी भावना के साथ कि जो शेष जीवन हमारा रहा है हम अपने जीवन में अच्छाइयां संचित करें और अपने जीवन को अच्छा बनाएं। आज हम पता नहीं, मैं तो कई बार सोचता हूं कि कहां कहां किस जगह हम एक साथ बैठेंगे। मैंने तो बहुत देखा है अपने जीवन में लोग बुराइयों के लिए इकट्ठे हो जाते हैं, लेकिन मुझे उस समय बहुत अच्छा लगता है जब हम अच्छाइयों के लिए इकट्ठे होते हैं। आज हम अगर फिर एक साथ बैठे हैं, पता नहीं कब बैठेंगे, फिर बैठेंगे यही मान करके कि अगर अगली बार ना बैठ पाए, आज ही बैठे हैं, कल सांस किसकी रुक जाएगी, मेरी भी रुक सकती है, और कल ना बैठ पाए तो कम से कम आज बैठे हैं अगर एक साथ, तो एक बार जिन्होंने अपने जीवन को अच्छा बना लिया है उनका स्मरण करें। हम बैठ करके एक साथ मिल करके नमोकार करेंगे इसी भावना के साथ कि हम भी अपने जीवन को समय रहते अच्छा बना सकते।
Yeah. تمام تمام ہاں وہ جمعہ رات سے دن کو سے دن